नमस्कार भारत, तारीख 15 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। रूस ने अमेरिका को चेताया कि अगर उसकी फौजें सीरिया पर उतरी तो छिड़ जाएगी लंबी जंग।
если он хочет получить там длительную войну, то конечно можно устраивать и наземные операции.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज नहीं लगेंगी क्लास। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाफिज सईद वाले बयान पर बवाल।
वेनू की जो घटना हुई है उसे लश्करे तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए।
सो वी डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस व्हाट इज एविडेंस ही हैज।
बिहार में कानून व्यवस्था की हालत पर एनडीए नेता मिले राज्यपाल से। ले चलेंगे आपको बिहार के मैथिली साहित्य उत्सव में। वुसतुल्ला खां की डायरी भी सुनिए, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अमरीका को चेतावनी दी है कि सीरिया की ज़मीन पर फौजों की तैनाती से एक लंबी लड़ाई छिड़ सकती है। वो अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें कैरी ने कहा था कि अगर सीरिया में अमन की कोशिशें नाकाम रहीं तो और विदेशी फौजें इस संघर्ष में कूद सकती हैं। सीरिया ने कहा है कि कुर्दिश इलाकों लड़ाकों के जीते हुए सीरियाई इलाकों पर तुर्की के ताज़ा हमले उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। दमिश्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इसकी शिकायत की है। उसने अंकारा में सीरिया में अपने करीब 100 हथियारबंदों को घुसाने का आरोप लगाया है। उधर तुर्की के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको वासियों से कहा है कि वो अपने देश को अवसरों से भरा देश बनाएं, जहां किसी को देश छोड़कर न जाना पड़े और न नौजवानों को मौत के सौदागरों के हाथों में फंसना पड़े। वो मैक्सिको के एकाटेपेक शहर में एक खुली रैली में बोल रहे थे, जहां लाखों लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे।
मैं
आज आपको आगे आने और मैक्सिको को एक अवसरों का देश बनाने के लिए अपील करता हूं, जहां सपने देखने के लिए किसी को देश न छोड़ना पड़े, जहां काम पाने के लिए शोषण का शिकार न होना पड़े और जहां कुछ अवसरवादियों के लिए बाकी लोगों को निराशा और गरीबी का सामना न करना पड़े। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया के विरोधी धड़ों ने मोरक्को में मीटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली नई सरकार का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद 5 साल से चल रही हिंसा और अराजकता को ख़त्म करना है। बेनगाजी में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संसद को मंजूरी के लिए 18 प्रस्तावित मंत्रियों की सूची भेजी गई है। लीबिया में दो विरोधी सरकारें और हथियारबंद गुटों के अलावा इस्लामिक स्टेट भी सक्रिय है, जिन्होंने कर्नल गद्दाफी की मौत के बाद वहाँ बने राजनीतिक संकट का फ़ायदा उठाया है। ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंक HSBC ने साफ किया है कि वो अपना मुख्यालय लंदन में ही रखेगा। इससे पहले बैंक ने अपने मुख्यालय को हांगकांग स्थानांतरित करने का विचार किया था। ब्रिटेन की EU सदस्यता पर भविष्य में होने वाले जनमत और कड़े वित्तीय प्रतिबंधों की आशंका के बावजूद बैंक के ब्रिटेन में रहने के फैसले से लंदन के दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने रहने की संभावना मजबूत होगी। इसराइली सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर हमलावर 5 फलस्तीनियों को गोली मार दी है। इसराइली पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 2 फलस्तीनी जेरूशलम में पुलिस पर गोलीबारी करने के दौरान मारे गए। इससे पहले एक पुलिसकर्मी को चाकू मारने की कोशिश कर रहे नौजवान को पुलिस ने गोली मार दी। इनके अलावा 2 फलस्तीनी वेस्ट बैंक के जेनिन में मारे गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और रूस में हुआ शांति समझौता खटाई में पड़ता दिख रहा है। अमेरिका और यूरोप की ओर से बमबारी रोकने की अपील ठुकराने के बाद अब रूस ने यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या अरब देशों ने सीरिया की जमीन पर फौजें उतारी तो लंबा युद्ध छिड़ जाएगा। उधर तुर्की ने सीरिया में मौजूद कुर्दों पर हमले जारी रखते हुए नया मोर्चा खोल दिया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अजय शर्मा से।
रूसी प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि सीरिया की जमीन पर किसी भी तरह की फौजी तैनाती एक पूरे और लंबे युद्ध की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के उस बयान के बाद कही है, जिसमें कैरी ने कहा था कि सीरिया में अगर अमन की कोशिशें नाकाम रहीं तो और विदेशी फौजें भी इस संघर्ष में शामिल हो सकती हैं।
Если он хочет получить там длительную войну, то, конечно, можно устраивать и наземные операции, и все остальное.
Хаме дараане ки кошишен на карен. Ее на кахен, ки агар гадбад хуи, то дусре араб деш ор Америка замини карвай карега. Сирия пар самжаута Керри ор Лавров ки батчит ке мутабик аге бадна чахие. Мене из баре ме хал хи ме апна джаваб дия хе. Магар ме фир кахунга ки кои бхи най юдх ме дилчаспи нахи ракта. Ор замин пар ладне ка матлаб хе ки ек пури ор ламби ладай. Хаме из бат ко дхян ме ракна чахие. Ее тхе руси прадханмантри Дмитрий Медведев ке шабд. सीरिया को लेकर हाल ही में जर्मनी में अमेरिका और रूस समेत दूसरे यूरोपीय देशों की बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर एक राय बनी थी कि एक हफ्ते में सीरिया में संघर्ष विराम तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही सीरिया में लड़ाई से जूझ रहे इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने की भी सहमति बनी थी। इस बीच सऊदी अरब की सेना ने कहा है कि उसने तुर्की के एक अड्डे पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं ताकि वो सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान जारी रख सके। अब तक सऊदी अरब अपनी जमीन से हमले कर रहा था। तुर्की में विमानों की तैनाती का मतलब है कि वो उत्तरी सीरिया में अपने निशानों के और करीब आ गया है। सऊदी विदेश मंत्री अब्दिल अल जुबैर ने कहा कि उनका देश वहां जमीन पर फौजें तैनात करने के लिए तैयार है।
The kingdom's readiness to provide special forces to any ground operations in Syria.
सीरिया में किसी भी जमीनी कार्रवाई के लिए हमारी तैयारी दाएश यानी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमरीकी गठबंधन से जुड़ी है, तो इसका फैसला हमें नहीं करना। हमने कहा है कि अगर अमरीकी गठबंधन सीरिया में जमीन पर फौजें उतारने का फैसला करता है तो सऊदी अरब उसके साथ अपनी फौजें उतारने को तैयार है। ये थे सऊदी विदेश मंत्री अब्दिल अल जुबैर। उधर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि तुर्की ने उत्तर सीरिया में दूसरे दिन भी कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया है जिसमें 2 लड़ाके मारे गए हैं। तुर्की सरकार चाहती है कि कुर्दिश YPG लड़ाके सीमा के पास से हट जाएं, जबकि अमरीका ने तुर्की से कहा है कि वो कुर्दिश ठिकानों पर हमले न करे बल्कि इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाए। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू के मुताबिक ये कुर्दिश ताकतें सीरिया में जड़ें जमाना चाहती हैं और इससे अजाज इलाके में खतरा पैदा हो गया है।
Dün ve bugün aynı işbirlikçi güçler Suriye rejimin uzantısı olan bu terör örgütü Rusya'nın
सीरियाई सरकार से जुड़ा ये आतंकी संगठन रूस का सहयोगी है और नागरिकों पर बम बरसा रहा है। इन्होंने इन 2 दिनों में अजाज इलाके पर हमला किया। हमारा इस मामले में रुख साफ है। इन हमलों के दौरान इन्होंने सीमा पर भी समस्या खड़ी की, इसलिए हमें इन पर कार्रवाई करनी पड़ी। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू। तुर्की के हमलों ने सीरिया में पहले से जटिल हालात में नई स्थिति पैदा कर दी हैं, जहां इलाकाई ताकतें एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। सीरिया में करीब 5 साल से चल रहे गृह युद्ध में अब तक करीब 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, सीरिया में चल रहे गृह युद्ध को रोकने के लिए अमरीका और रूस में हुआ शांति समझौता खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रुख भारत का करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति जारी है। वामपंथी छात्र संगठनों ने कहा है कि छात्र संघ के अध्यक्ष की रिहाई होने तक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कामकाज ठप रहेगा। वहीं शिक्षक संघ ने भी आज क्लास न लेने का फैसला किया है। उधर कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि JNU में छात्रों के प्रदर्शन को पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है। इसे लेकर विरोधी दलों ने गृहमंत्री से सबूत पेश करने को कहा है। एक रिपोर्ट सुनिए अशोक कुमार से।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी से नाराज छात्रों ने ऐलान किया है कि उनकी रिहाई होने तक कोई कामकाज नहीं होने दिया जाएगा। वहीं JNU शिक्षक संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ का कहना है कि कोई भी शिक्षक क्लास नहीं लेगा। शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजय पटनायक ने कहा,
सपोर्ट दिस स्ट्राइक कॉल एंड वी विल नॉट टेक क्लास। टीचर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कॉल, क्लास नहीं लेंगे।
इसके पहले कल छात्रों और शिक्षकों ने JNU में मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। पटनायक ने कहा कि इमरजेंसी के बाद JNU में ऐसी स्थिति पहली बार देखी जा रही है।
JNU का प्रेसिडेंट पहली बार इमरजेंसी के बाद हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट उसको इस तरह के पिकअप करके उसको जेल में डाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते हैं।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि JNU में प्रदर्शन को चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है।
जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा था यदि कोई भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता अखंडता अथवा संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे हमारी सरकार किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी।
राजनाथ सिंह के इस बयान पर विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर गृह मंत्री के पास सबूत हैं तो उन्हें उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए।
सो वी डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस व्हाट इज एविडेंस ही हैज इफ देयर इज एविडेंस।
सीताराम येचुरी कह रहे थे कि हमें पता नहीं वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है। अगर सबूत हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, हम हमेशा यही कहते रहे हैं, लेकिन इसे प्रगतिशील संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल ना करें। ये थे सीताराम येचुरी के शब्द। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा कि गृह मंत्री को जमा किए गए सबूत जनता के सामने पेश करने चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह के बयान पर बहस शुरू होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री का बयान सुरक्षा एजेंसियों से मिले पुख्ता इनपुट पर आधारित है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अब रुख बिहार का करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवालिया निशान लगाने वाले एनडीए नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा समेत एनडीए के 3 नेताओं की हाल में हुई मौत को लेकर गठबंधन के नेता आक्रोश में हैं। राज्यपाल से मिलने वाले नेताओं में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रमुख थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस मुलाकात के बाद मांझी से संपर्क साधा और पूछा उन्होंने राज्यपाल से क्या कहा।
मांग हम लोगों की ये थी कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज कुछ भी नहीं रह गई है। नित्य दिन अपहरण, डकैती और मर्डर हो रहे हैं, और मर्डर में भी AK-47 का यूज किया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि एक पर एक राजनीतिक घटनाएं दुर्भावना से ग्रसित होकर के की जा रही है, और इस पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उल्टी कहती है कि ये लोग हार गए हैं इसलिए विक्षिप्त हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं है इसलिए बोलते हैं। ये संवेदनहीनता का एक प्रश्न उठता है। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से आज एक तरह से SOS किया है कि अब आप हस्तक्षेप कीजिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को कहिए। तो हमारा कहना था, हम लोग यही कहा है कि नीतीश कुमार बहुत दबाव में काम कर रहे हैं और वो दबाव से उबर नहीं सकते हैं।
मांझी साहब, आप जो दबाव की बात कर रहे हैं वो किस तरह का दबाव है नीतीश कुमार पर?
बहुत सी बातें हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं कही जाती है, लेकिन वो स्पष्ट है कि उनके साथ कौन लोग हैं साथ में। तो जो पार्टी साथ में है वही न करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि एक ही उपाय अब बच गया है कि राष्ट्रपति महोदय बिहार के मामले में हस्तक्षेप करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन हो तभी यहाँ की स्थिति सुधर सकती है।
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है विपक्ष इस मामले का राजनीतिकरण कर रहा है और जो लोग आपराधिक छवि के थे उन्हीं के साथ वारदातें हुई हैं।
हम ही नहीं कहते हैं कि वो लोग सब आपराधिक छवि के थे, कानून के तहत उसको नैब करना चाहिए था। ये सब तो थोथी दलील है भाई जी, कोई तर्क नहीं लोगों के पास है।
ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। उधर सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगा रहा है। वात्सल्य राय ने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों को वो किस आधार पर खारिज कर रहे हैं।
विपक्ष ने इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की है और इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मर्डर नहीं हुए हैं या अपराध कुछ बढ़े नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपराध बढ़ा है, मगर जो अपराध बढ़े हैं उसका नेचर ऑफ देखिएगा मर्डर का, तो वो सारे के सारे लोग आपसी मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रतिद्वंदता वाले हैं।
एनडीए के घटक में जितने दल शामिल हैं उनका कहना है कि विरोधियों को खास तौर पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
भाई, जो आदमी गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में एक न एक दिन गिरता है। ये लोग महानुभाव लोग रहे हैं, इन लोगों पर जो है सैकड़ों मुकदमे मर्डर के और इन चीजों के रहे हैं। तो अब जहाँ क्रिमिनल राइवलरी है तो अब उसमें इस तरह की घटना हो गई है। अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो उसको हवा दे रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल ये हो रहा है।
बिहार के मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और अब यहीं पर कार्यक्रम में हम अखबार पढ़ लेते हैं। अजय शर्मा, अखबार आप पढ़ चुके हैं और मुझे नजर आ रहा है कि आज भी सारे अखबारों में जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान है जेएनयू को लेकर वही छाया हुआ है।
ज्यादातर अखबारों की प्रमुख खबर यही है और पहले पन्ने पर है। ज़्यादातर अखबारों ने बताया है कि गृहमंत्री ने जो टिप्पणी की है सईद को, हाफिज़ सईद जो हैं लश्कर ए तैयबा के प्रमुख के समर्थन की कि जेएनयू को उनका समर्थन हासिल है, इसको कई अखबारों ने जो है उसको इस तरीके से दिखाया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत देना चाहिए और
सीताराम येचुरी की तीखी
तीखी निंदा हो रही है, विपक्षी दलों के बयान छापे हैं। और साथ में एक जनसत्ता मेरे सामने है उसमें एक और बॉक्स लगा हुआ है कि भाकपा का जो मुख्यालय है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका मुख्यालय पर कुछ युवाओं ने काली स्याही के का हमला किया उसके बोर्ड पर जो बाहर लगा हुआ है। और इससे इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी खबर में है, ये अखबार है नई दुनिया, इसमें लिखा है कि एबीवीपी सदस्यों ने भी पाक के समर्थन में नारे लगाए थे और इसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और
अगर हम जेएनयू की घटना के जिक्र छोड़ें आगे बढ़ें तो और कौन सी खबरें हैं?
और जो दूसरी बड़ी खबर है वो है मेक इन इंडिया का जो वीक चल रहा है मुंबई में, उसके मंच पर आग लगने की जो खबर है वो सबसे बड़ी है, जिसमें नई दुनिया अखबार ने जो है उसे पहले पन्ने पर अपना काफ़ी बड़ा एक तस्वीर छापी है और उसमें दिखाया है कि कितनी बड़ी आग थी ये, और उस पर लिखा है कि अमिताभ बच्चन के कविता पाठ के 5 मिनट बाद ही भीषण आग लगी।
लेकिन शुक्र है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ
जी, अभी तक ऐसा बिल्कुल कोई सूचना नहीं मिली है। और जो इसके अलावा तीसरी एक बड़ी खबर है जो कि कई अखबारों ने जैसे पहले पन्ने पर लिया है वो है कि पानी के बकाया बिल और लेट सरचार्ज को 100% तक माफ़ कर दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में,
जैसा कि हम जानते हैं कि कल उनकी सरकार ने एक साल पूरा किया।
इसके अलावा जो है भारत ने श्रीलंका से जो है सीरीज जीत ली है T20, उसकी खबर भी जो है प्रमुखता के साथ पहले
उसका जिक्र हम खेल समाचारों में जरूर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा आपका।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं वसुतुल्लाह खां की डायरी।
1965 के युद्ध का एक नुकसान ये हुआ कि भारतीय फिल्में पाकिस्तान आनी बंद हो गईं। फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ा होना सीख गई, और इतना सीख गई कि मुंबई के फिल्म मेकर पाकिस्तानी धुने और लाहौर के फिल्म मेकर भारतीय स्क्रिप्ट चुराने लगे। मगर 60 और 70 का दशक वाकई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन जनरल ज़ियाउल्लाह के आने से एक नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी चादर उड़ा दी गई, इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसर बोर्ड को दाढ़ी उगाई, VCR भारतीय फिल्मों के कैसेटों समेत जब्त होने लगे और तमाशाई पुलिस के छापों से बचने के लिए दीवारें कूद कूद के टांगें तोड़वाने लगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में VCR खुला चलता था। जिया साहब की बेटी को शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पसंद थे, चुनाचे शत्रु जी कई बार अपनी फैमिली समेत जिया फैमिली के मेहमान भी बनते रहे। हमें इस पर कोई आपत्ति ना थी ना है। इस बीच ये हुआ कि पाकिस्तान का बना रहबर वाटर कूलर और छोटी स्क्रीन पे पाकिस्तानी ड्रामा तो सीमा के आर पार राज करता रहा, पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा पढ़ा दिया गया और पाकिस्तानी सिनेमा कमर्शियल प्लाजों और सुपरमार्केटों में तब्दील होते गए। 2007 में परवेज मुशर्रफ साहब का भला हो कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर से इंटरटेनमेंट टैक्स कम कर दिया और भारतीय फिल्मों की नुमाइश की भी इजाज़त दे दी। इसके बाद पाकिस्तान में मॉडर्न फिल्म मेकिंग की कौंपलें फूटने लगीं। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने नए रास्ते, नए स्क्रिप्ट और नई टेक्नोलॉजी के साथ घाटे और मुनाफे के चक्कर में पड़े बगैर काम शुरू कर दिया। पहली फिल्म खुदा के लिए थी जिसने ऐलान किया कि पाकिस्तानी सिनेमा दूसरा जन्म ले चुका है। 2007 में पाकिस्तान में 6 मल्टीपल स्क्रीन्स थीं, आज 80 हैं। 2010 में 3 लोकल फिल्में रिलीज हुई, इस साल 20 से ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं, और जो रिलीज़ हो चुकी हैं उनमें से 2-3 तो ऐसी हैं कि उन्होंने लोकल मार्केट में भारतीय फिल्मों से ज़्यादा कमाई की है। पाकिस्तान का नया ड्रामा भारतीयों तक जिंदगी चैनल के जरिए पहुँच रहा है। علی ظفر، فواد خان اور ماہرہ خان کو اپنے پریچے کی نہ دلی میں ضرورت ہے نہ لاہور میں آورشکتا۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ زی انٹرٹینمنٹ گروپ نے بھارت اور پاکستان کا 70واں سوتنترتا دیوس آنے تک دونوں دیشوں کے 12 فلم میکرز کو زیل فار یونٹی پروجیکٹ کے چھتر تلے 12 فیچر فلمیں بنانے کی دعوت دی ہے۔ یہ 12 فلمیں دونوں دیشوں کے ساتھ ساتھ باقی دنیا میں آباد بھارتیوں اور پاکستانیوں کو بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ کیا آزادی کی 70ویں سالگرہ پہ اس سے اچھی بھی کوئی خبر ہو سکتی ہے؟ اب تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ایک فلم بناؤں جس کا نام ہو ایک بار مل تو لیں۔
تو وسعت اللہ خان کی ڈائری کا یہ پنا آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور لکھیے گا۔ رخ بہار کا کرتے ہیں۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں میتھلی ساہتیہ اتسو کل سمپن ہو گیا۔ 3 دنوں تک چلے اس اتسو میں میتھلی بھاشا کے ساہتیہ سنسکرتی سے عام لوگوں کے کٹتے جانے کے سنکٹ پر چرچا ہوئی۔ تو میتھلی سماج کے پرمپراگت گیت، 600 سال پرانے وداپت ناچ، ناٹیہ منچن، کوی گوشٹھیوں نے اس اتسو کو الگ الگ رنگوں سے سرابور کیا۔ میتھلی ساہتیہ اتسو کے انہی رنگوں کی تصویر کھینچ رہی ہیں پٹنہ سے سیٹو تیواری۔
پٹنہ کے یوا آواس میں بداپت ناچ کا منچن ہو رہا ہے۔ کتھاکار پریشور ناتھ ریڑو کے گاؤں اور آہی ہنگنا کے کلاکار ایشور کی وندنا کر رہے ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک کلاکار کہتا ہے کہ ایشور کی آرادھنا کا گیت نہ گاؤ بلکہ بیل، بکری، کتے اور ہل کی آرادھنا کرو، کیونکہ یہ ہمارے جیون کے لیے ضروری ہے۔
لوگ دیوی دیوتا کا بند ہونا کر سے کہ وہ ہر بیل، کتا، بکری کے
ماما سنا
بھار میں رہتے ہو
اتنا دیکھنے بھات کی مون جانا رہے سے کھائی تھا وہ کتا سے تو۔
بداپت ناچ اور اس جیسی ہی سانسکرتک ودھاؤں کا منچن میتھلی ساہتیہ اتسو میں ہوا۔ 12 سے 14 فروری کے بیچ پٹنہ میں اس کا آیوجن میتھلی لیکھک سنگھ نے کیا۔ آیوجک و ساہتیکار اشوک کہتے ہیں کہ میتھلی ساہتیہ اور سنسکرتی کا کتابوں میں سمٹ جانا سب سے بڑا سنکٹ ہے، اسے عام لوگوں تک پہنچانا ہی آیوجن کا مقصد ہے۔ آیوجن میں خاص طور پر یواؤں کی بھاگیداری بڑھائے جانے پر زور ہے۔
ہم سب آپس میں گپ کرے چلوں ہیں جو میتھلی ساہتیہ اب 60 سے اوپر کے لوگ کے بھاگ سینئر سٹیزنز فورم، لیکن اے لٹریچر فیسٹیول کے مادھیم سے ہمارے یوا سب سے ہو جیسے سے ای میں جڑلا ہے۔
پیٹک خاطر ایک روٹی لے روز مرئی چھی کے کیبر۔
حالانکہ صرف ساہتیہ کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ نئی کتابیں اپنی ماتر بھاشا میں لکھنا بھی ایک بڑا سنکٹ ہے۔ آئی آئی ایم کولکاتہ کے پروفیسر رہے ودیانند جھا کہتے ہیں کہ ویشویکرن کی سنسکرتی نے اس سنکٹ کو بڑھا دیا ہے۔ لوگ بیسٹ سیلر بننے کے لیے صرف ایک ہی بھاشا میں لکھ رہے ہیں۔
اکھن تو سب منے سے چیتن بھگت بننا چاہے چاہے سب سے بیسٹ سیلر لکھا چاہیے، انگریزی میں لکھا چاہیے، تو ایک اہم استھتی میں میتھلی میں لکھا والا کے
उत्सव में मैथिली समाज के पारंपरिक गीतों का मंचन हुआ। जानकारों के मुताबिक इस तरह के पारंपरिक मंचन मैथिली समाज में अब बहुत कम होते हैं। महोत्सव में नेपाल से आए ब्लॉगर प्रवीण कुमार चौधरी भी ये चिंता जाहिर करते हैं। वो बताते हैं कि नेपाल में सरकार मैथिली के प्रति कहीं ज्यादा उदार है जबकि भारत में ये भाषा राजनीति का शिकार है।
पिछले सरकार एक अक्षय कोष निर्माण के लग तो इस प्रकार से हम एमहर से बहुत निक बेहतर पोजिशन देखे मैथिली के नेपाल में।
18 सत्रों में चले इस उत्सव में मैथिली को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका, मैथिली पुस्तकों, नाटकों, किस्सा कहने की कला, बाल साहित्य पर बातचीत हुई। साथ ही मैथिली की पहली प्रेम कथा प्रेमक टाइमलाइन सहित कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। उत्सव में शिरकत कर रही साहित्यकार उषा किरण खान ने मैथिली की वाचिक परम्परा के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया।
मैंने मुसहर से लेकर ब्राह्मण तक कोई बीच में जाते मलाह के, बनिया के, सब जाति के अपन जातीय एक न एक टा कोनो वाचिक परंपरा के कोनो न कोनो चीज होय छे जे लुप्ति के कगार पर छे, ओकर कलेक्शन नहीं भर रहल छे।
जहां निराशा और संघर्ष के तमाम स्वर हैं, वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैथिली की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति विषय पर शोध कर रही भूमिका उम्मीदों से भरी है।
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स
के जमाना छै और ओ और स्ट्रॉन्गे भ रहल छै। अहाँ एहन नहि कहि सकै छी कि मतलब नौजवान सब जागरूक नहि छै, इनफैक्ट हमर जे एमफिल है हम ओकरा ओही दिशामे देखै छियै।
भाषा और बोली के अस्तित्व का संकट झेल रहे भारतीय समाज में इस तरह के उत्सव सुखद और सुकून देने वाले हैं। बीबीसी के लिए पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
मैथिली साहित्य उत्सव कल बिहार में संपन्न हुआ और अब उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
नागरिक विकास मंत्रालय आज देश के सबसे स्वच्छ शहर का ऐलान करने वाला है। इस बाबत देश के 73 शहरों में सर्वेक्षण कराया गया था जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण कहा गया था। सर्वे का मकसद प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी का पता लगाना है। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे पर्यावरणविद आर के पचौरी के मामले में आज दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। 11 फरवरी को शिकायतकर्ता की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अहमदाबाद की एक अदालत आज पटेल नेता हार्दिक पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। देशद्रोह के आरोप में हार्दिक पटेल पिछले साल अक्टूबर से जेल में हैं। इससे पहले 3 बार जांच अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण उनकी जमानत पर सुनवाई टल चुकी है। आज से आप भारतीय रेलवे की IRCTC वेबसाइट पर महीने में सिर्फ 6 बार ई टिकट बुक करा पाएंगे। अभी तक महीने में 10 टिकट तक बुक कराने की सुविधा थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक ऐसा ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी आज खुल रही है। बाचा खान यूनिवर्सिटी पर पिछली 20 जनवरी को चरमपंथियों ने हमला किया था जिसमें छात्रों और शिक्षकों समेत 22 लोग मारे गए थे।
कार्यक्रम में अब वक्त है खेल की खबरें सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
सबसे कम टोटल पर सिमट गई है श्रीलंकाई टीम। पिछली बार 87 था, इस बार 82 है। 18 ओवर ही खेल पाई श्रीलंका की टीम।
भारत ने कल विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को बेहद आसानी से 9 विकेट से मात दी। भारत के सामने जीत के लिए केवल 83 रनों का लक्ष्य था जो उसने शिखर धवन के नाबाद 46 और अजिंक्य रहाणे के नाबाद 22 रनों की मदद से 13.5 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया जिसके बाद आर अश्विन, सुरेश रैना और दूसरे गेंदबाजों की घातक गेंदों के सामने पूरी श्रीलंकाई टीम 18 ओवर में ही केवल 82 रनों पर सिमट गई।
फैंटास्टिक मोमेंट फॉर द वेस्ट इंडीज, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप।
उधर आखिरकार वेस्ट इंडीज ने कल शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम बीरपुर बांग्लादेश में खेले गए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को केवल 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हराकर खिताबी जीत हासिल की। इस तरह से भारत का चौथी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया और वेस्ट इंडीज पहली बार चैंपियन बनने में कामयाब रहा। वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए केवल 146 रनों का लक्ष्य था। वेस्ट इंडीज के कैसी कार्टिन 52 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा कीमोपाल भी 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पूरी भारतीय टीम 45.1 ओवर में ही केवल 145 रनों पर सिमट गई।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का एक वक्त फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अमरीका को चेतावनी दी है कि सीरिया की जमीन पर फौजों की तैनाती से एक लंबी लड़ाई छिड़ सकती है। सीरिया ने कहा है कि कुर्दिश लड़ाकों के जीते हुए सीरियाई इलाकों पर तुर्की के ताजा हमले उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको वासियों से कहा है कि वो अपने देश को अवसरों से भरा देश बनाएं जहां किसी को देश छोड़कर न जाना पड़े। लीबिया के विरोधी धड़ों ने मोरक्को में एक मीटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली नई सरकार का प्रस्ताव रखा है। ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंक HSBC ने साफ किया है कि वो अपना मुख्यालय लंदन में ही रखेगा। ऑस्कर के लिए नामित फिल्म रेवेनेंट ने 5 पुरस्कार जीतकर ब्रिटिश फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में झंडे गाड़ दिए हैं। इसे बेस्ट फिल्म अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। केंद्रीय अफ्रीकन रिपब्लिक के लोगों ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान किया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, यदि आप ताज़ा खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर जो है 24 घंटे लगातार आपके साथ। एक घंटे बाद भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे विश्व भारती लेकर फिर हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।